نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محسن انسانیت، اس میں سے ہم آج کل ٹاپک دیکھ رہے ہیں اور اجالا پھیلتا گیا. پیچھے ہم نے ایک طویل ٹاپک دیکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی محاذ تھے، جتنی بھی جنگیں تھیں، ان سب میں کس طریقے سے آپ ہر جگہ آگے سے آگے بڑھتے رہے. اور ایک اچھا قائد زندگی کے ہر میدان میں قائد ہوتا ہے، چاہے تلوار تھامنی پڑے، چاہے قلم تھامنا پڑے، اور کبھی ساتھیوں کو بھی تھامنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی ایک میدان میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ خوبی دے دیتا ہے کہ وہ ہر کام تو نہیں لیکن بہت سارے کام کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے اپنے دین کے جو کام کروانے ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر بہترین ساتھی بھی دے دیتا ہے. جو کمی انسان میں ہوتی ہے وہ ساتھیوں کے ذریعے پوری ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ عام دنیاوی زبان میں کہ بہت سارے لوگ اپنے بارے میں بہت سارے خواب رکھتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ خواب پورے نہیں ہوتے، تو پھر وہ اپنے بچوں سے وہ امیدیں لگا لیتے ہیں. بس اگر کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا تو نہیں بن سکا، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے ڈاکٹر بن جائیں. اسی طرح سے حفظ کا شوق بعض دفعہ بچوں میں پورا کیا جاتا ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انسان چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ایک فرق آ جاتا ہے ساتھ، کہ یہ تو آج کے دور کی بات ہے، ہمارے دور میں یہ تھا. یعنی اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے بچپن کی اور اپنی جوانی کی باتیں سناتے رہتے ہیں نا، لیکن جو یہاں معاملہ ہے اللہ کے راستوں میں، خاص طور پہ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہی ہوں، تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک گول ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے، زندگی میں کچھ کرنے کا پیشن ہوتا ہے. اب انسان تو اپنی ذات سے کمزور ہے، آپ بڑی بات سوچ لیجئے، اللہ دوسرے لوگوں کو آپ کا معاون بنائے گا. بالکل اسی طرح سے جیسے اصحاب کہف کا واقعہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، کیا وہ واقعہ تھا، کس طریقے سے وہ لوگ گھروں سے خالی ہاتھ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ان کا مددگار بنا دیا، کس طرح سے بنا دیا کہ ایون سورج بھی کنی کو ترا کے نکل جاتا، کروٹیں بدلائی گئیں. تو ایسے لگتا ہے آپ کو بعض دفعہ کہ پوری کائنات آپ کی ہم خیال ہو گئی، آپ کی معاون ہو گئی. سیرت پڑھتے ہوئے خاص طور پہ ہم سب کو بھی یہ سوچنا ہے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ اہل اصلاح تو رہے، ہر دور میں لوگوں کو ضرورت تو رہی، لیکن کیا وجہ ہے کہ عملی طور پر ابھی تک وہ حالات نہیں بن سکے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. اس وقت تو ریسورسز بھی بہت تھوڑے تھے نا، لیکن اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، لیڈر نہیں ہے. آج امت مسلمہ کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، فالوورز بہت ہیں. یعنی اس وقت جو سبق بھولا ہوا ہے امت کو، وہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ دنیا کی امامت کا کام بھولا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سب کو اپنی اپنی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے سب کے اپنے اپنے خواب ہیں، اور جس کی وجہ سے اپنے اپنے غموں میں بھی کھو گئے. میں جب صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتی ہوں، اور آج کل یہاں الحمدللہ ہم لوگ امریکہ میں جو کورس کر رہے ہیں امبیسیڈرز آف اسلام، تو اس میں ہم عشرہ مبشرہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا. کل ہم نے حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں پڑھا. پڑھتے اور پڑھاتے وقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آج وہ کردار نہیں ہے. اتنی حیرت انگیز قسم کی چیزیں کہ جس کو پڑھ کر انسان بعض دفعہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں تھے، ان کو درد نہیں ہوتی تھی، چوٹ نہیں لگتی تھی. آپ سوچیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ٹوٹل گنے ہم نے بعد میں، پھر پورے 100 زخم، جس میں صرف ہاتھ میں 69 زخم، यानी तकरीबन 70 के करीब तो हाथ में जख्म थे, बल्कि अगर मैं गलत ना कहूँ तो 76 थे, और बाकी सारे जिस्म पे मिलाएं तो 24, और इतना कारी जख्म सर के ऊपर लगा। लेकिन टस से मस नहीं होते थे, ये सोचिए आखिर क्यों? ये इन लोगों के जज्बे और वो बेखुदी का आलम। कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और फिर वो मकसद जब इतना प्यारा हो जाता है ना, तो फिर अपनी जान, बीमारी, तकलीफ, परेशानी बहुत छोटी, यानी फिर शर्म आती है। इतनी छोटी सी वजह से मैं पीछे रह गई। यानी कभी मैं अपने ऊपर लेकर सोचूं कि आज जो बहाने या जो उजर, बहाना भी लफ्ज़ छोड़ दीजिए, आज अमूमन जो उजर हमारे होते हैं, और मज़े की बात है हमें वो इतना बड़ा को हमालिया लग रहे होते हैं, और हम सोचते हैं किसी को क्या पता है मेरी इतनी मजबूरी, मैं इतनी मजबूर हूँ क्या, वो मेरी मासी नहीं आई और वो मेरे उंगली में दर्द है। सहाबा इन सारी चीज़ों से ऊपर थे, हालांकि उनको भी बीमारियां परेशानियां थी, और उनके पास था भी क्या, दरियाओं में कूद जाते थे, पहाड़ों पे चढ़ जाते थे। इस तरीके से क्यों? मकसद प्यारा था। तो मुझे और आपको कम अज़ कम अब इस बिल्कुल इस किताब के पूरे एंड पे हम पहुँचे हुए हैं, आखिरी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बड़े टॉपिक्स में से, अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस करें। कुछ चीज़ें इज्तमाही तौर पे इंसान करता है तो अच्छी होती हैं, कुछ इनफरादी तौर पे भी करनी पड़ती हैं, कि जब आप हकीकत में दलील के साथ जीते, और ख़ास तौर पे जो पीछे टॉपिक थे ना, दलील की बुनियाद पे जीना, तो याद रखिए ईमान वाले के पास हर बात की दलील होती है। जियो तो दलील के साथ, मरो तो दलील के साथ, रुको तो दलील के साथ, चलो तो दलील के साथ, और दलील नहीं तो कुछ भी नहीं है। वजह क्या है कि एक इंसान इस दुनिया में अल्लाह का नुमाइंदा है। आपको मुझे अल्लाह ने क्यों भेजा इस दुनिया में, कभी आप सोचते? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला आपको मुझे एक दलील के साथ पैदा करता है। हमारी ज़िंदगियों में एक दलील है, और जिस दिन वो निकल जाती है ना, तो हम बिल्कुल एक मजबूरियों का पलंदा बन जाते हैं, और ये मजबूरियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। याद रखिए, चंद दिन पहले अल्लाह ताला ने एक मौजू पे बात करवाई, जो मुझे लगता है शायद सबसे अहम मौजू होगा आज तक जिन बातों पे मैं बोली, और वो मजबूरियों की आड़ में था। इतने छोटे छोटे उजर और इतनी छोटी मजबूरियाँ, कि वाकई कहने को दिल कर रहा था कि जितने हम छोटे उतनी हमारी मजबूरियाँ छोटी। लेकिन इतना हम बड़ा बनना चाहते हैं, या अंदर खाते हम अपने आप को जितना बड़ा समझते हैं ना, उतना बड़ा हमारा वो उजर और वो मजबूरी हमें दिखती है। एक मजबूरी होती है ईमान वाले की, सिर्फ एक, और वो अल्लाह की ज़ात है। एक वीक पॉइंट होता है ईमान वाले का, और वो अल्लाह की हस्ती होती है। वो ये नहीं कहता मैं अपने शोहर को नाराज़ नहीं कर सकती, मैं बीवी को खुश रखना चाहता हूँ, मेरे बच्चे मेरी मजबूरी हैं, फिर मैं उनके लिए अल्लाह को नाराज़ ना करूँ तो और क्या करूँ, फिर बच्चों की खुशी, बच्चों का गम। वो क्या कहता है उस वक़्त? मेरी एक ही मजबूरी है कि मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता, अल्लाह के साथ अपना मामला बिगाड़ नहीं सकता। जब ये बात हो जाएगी ना, उसके बाद फिर ज़िंदगी में इतनी यकरुही आएगी, ऐसे आपको लगेगा कि कई जगहों से बिकने बिकाने के बाद आप असल मालिक के हाथों में आ गए। फिर आप बेपरवाह होंगे, कोई मानता तो माने, नहीं मानता तो ना माने, कोई खुश है तो खुश है, नहीं खुश तो ना सही, कोई आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए, किसी को मुझसे क्या और मुझे किसी से क्या। ये जो बेनियाजी आती है ना, इसके बाद तौहीद पक्की होती है, असल तौहीद फिर ही पक्की होती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी पूरी कर दे। इस वक्त चूँकि हम इस्लामी तहरीक और इस्लामी रियासत का फैलाव देख रहे हैं, तो इसको भी समझ के फिर बुक पे चलते हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से फिर मदीना में आकर तकरीबन 9-10 साल जो गुजार लिए, इसमें कैसे उजाला फैलता गया, कैसे एक एक चीज अपनी जगह से हिलती गई। बड़े बड़े पहाड़ थे अल्लाह के नबी के आगे, मुखालफतों के, आजमाइशों के, फितनों के, एक एक करके हटता गया। वजह पॉलिसीज, हिकमत अमलियाँ। आपने हर मसले को ऐसे उठाया और उस वक्त उठाया जब जैसे जिस वक्त उठाने की ज़रूरत थी। आपने ऐसे कोई इकदाम नहीं किए कि जिससे एक नौजायद मदीना की रियासत पे कोई बोझ पड़ता। आपने दुश्मनों को एक एक करके या तो मसहूर कर दिया, कुछ तो इस्लाम में आ गए, और जिनके नसीब में हिदायत नहीं थी वो अल्लाह के पास चले गए। लेकिन अब लगता है कि वाकई मदीना अपनी जगह पे है। तो आइए देखते हैं कि खैर ख्वाहाना अपील क्या थी, किस तरीके से ये बात अगर कह दी जाए कि इस्लाम तलवार के ज़रिए से नहीं, दलील के ज़रिए से फैला। और इसको आज भी याद रखिएगा, आज हमें हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है, तीर तलवारों से नहीं फैलेगा आज भी इस्लाम। आज भी इस्लाम दावा के ज़रिए फैलेगा, जब हमें किसी एक का अल्लाह की तरफ आना सुर्ख होंठों से प्यारा हो जाएगा ना, फिर इस्लाम फैलेगा। तो आज इस वक्त मुसलहीन को और उम्मत के बड़े बड़े लोगों को बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त हमारी कोशिशें, हमारा माल, हमारी एनर्जीज इस बात को आम करने में लगे जिस बात ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर दिया था। अल्लाह ताला हमें इसका हिस्सा बना ले। आइए बुक में से पढ़ते हैं। खैर ख्वाहाना अपील, दलील मुजर्रद दलील ही ना थी। मुजर्रद कहते हैं ओनली, अकेला, उस बंदे को कहते हैं ना जो अकेला हो, रांड, मुराद अपनी जगह। बल्कि दलील के साथ दिलों को पिघला कर मोम कर देने वाली, दूर भागने वालों को करीब खींचने वाली, रूहों के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देकर इनको खुलवा लेने वाली अपील भी बराबर शामिल थी। कितने खूबसूरत जुमले हैं, एक एक जुमले को अपने ऊपर लीजिए। दलील वो जो दिलों को पिघला दे, यानी दलील के साथ अपील। आप ये जुमला लिख लेना, दलील के साथ अपील चाहिए। मैं आपको इसका अपनी लफ्ज़ों में बताती हूँ कि कई लोग बहुत सारी दलीलें, दलील को कई रेफरेंस, हवाले, बहुत रेफरेंस देंगे। इतनी जगह ये चीज़ है, कुरान में, हदीस में, फिक्ह में, फलां इमाम का ये कॉल, फलां का, लेकिन बात अपील नहीं करती। या तो जहनी लेवल से बहुत ऊंची होती है, या उसमें इतने एच पेच होते हैं कि सुनने वाला प्लस माइनस में पड़ जाता है, लेकिन उसके दिल को अपील नहीं करती। तो अल्लाह के नबी की शान क्या थी, आपकी बात पुर दलील भी होती थी और आपका अंदाज दिलों को अपील भी करता था। दावत हक की अपील ने चट्टानों में एहसास उभार दिया। आप महसूस करें ना अगर एक एक जुमले को, तो आपको ऐसे मज़ा आएगा जैसे आप बड़ी मज़े की चाय की चुस्की लें ना, तो आपके अंदर तक उसकी खुशी और लज्जत और टेस्ट जाता है ना, बिल्कुल वही चीज़ लगती है कि किस तरीके से अल्लाह के नबी की ज़ुबान से जो हक जारी होता था वो लोगों के दिलों पर जाता था और फिर आप उसको मनवा भी लेते थे। याद रखिए कि काम करना आपका काम है, उसको दिलों तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। चट्टानों में सांस उभर जाए, जी ज़रा सा सोचें, मैं अपने ऊपर लेके इसको सोचे, दावते हक की अपील, क्या हमारे सामने कभी किसी भी हक की बात की अपील आई है? क्या हमारे अंदर एहसास उभरता है? चट्टानों में एहसास उभर जाए और इंसान में ना उभरे। या वही आयत याद आ रही है कुरान की, सूरत हशर, वलव अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतहू ख़ाशियं मुतसद्दियं मिन ख़शयतिल्लाह, कि अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल किया जाता तो वो खशियत से कांपने लगते। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान के सामने इतना बड़ा हक पेश किया जाता है और वो टस से मस नहीं होता, सिर्फ अपनी ज़ात के कुछ मसलों मसाइल में खोने की वजह से। और क्या होता, पीछे वाली सात बात बना लें कि दावते हक की अपील ने चिटानों में एहसास उभार दिया, लकड़ी के कुंदों में जज्बात की लहरें पैदा कर दी। बात सच, बेजान चीज़ों में जज्बात आ गए और अखड़ दुश्मनों को अश्क आलूद कर दिया। नबी सल्लम के सामने जो दुश्मन था ना, बड़ा अक्खड़ था, स्टबन केले, रो पड़ा। इस्लामी तहरीक के साथ से ऐसे ऐसे रुख परवर नगमात उमड़े के दिलों में नई जिंदगी की रौ दौड़ा गए। जाओ कुरान खोल के देखो कि किस तरह इसके एक एक जुमले में शऊर के नूर के साथ जज्बों की गर्मी घुली हुई है। बस जज्ब करें इन चीज़ों को, और जिनका कुरान के साथ गहरा ताल्लुक है वो इसको एक सेकंड में समझ जाएंगे। ये दो आतिशा सहबाए तहूर थी कि जिसने बड़े बड़े संग दिलों को मुसख्खर कर दिया। दो आतिशा क्या होता है और सुबहाए तहूर क्या होता है, सोचिए। और जिसने हक के दुश्मनों को हक का खादिम बना दिया था, इसको हाईलाइट करें। कल तक वो हक के दुश्मन थे, आज वो हक के खादिम बन गए। फिर इसका अदबी जोर इतना सहर आफरीन था कि इसने चमने फसाहत की बुलबुलों को साकित और वक्त की बज़्मे सुखन में नगमा आफरीन शोरा को गूंगा कर दिया। इसने ऐसी अरबी मुबीन में कलाम किया कि सारा अरब वैसा कलाम पेश करने से आजिज़ रह गया। यहाँ दावते हक के नगमे के चंद बोल पेश कर रहे हैं। दावते हक से क्या मुराद है? कुरान और नगमा आयते हैं। चंद बोल क्या हैं? आयते। नगमे से मुराद कुरान का वो सौती हुसन है। क्या समझ आई ये आखिरी हिस्सा? दोहरी से मुराद समझा कि दो आतिशा सुहबाए तहूर के जिसने बड़े बड़े दिलों को मसहूर कर दिया। यानी इस्लाम में और कुरान में ये ताकत थी कि जो दो धारी तलवार का काम करती थी। किस तरीके से ये दिलों पे असर करता था और लोगों की जिंदगियों के रुख बदल देता था। और हकीकत भी यही है, आज भी यही है। मत सोचिए कि आज का दौर पहले से कोई बहुत मुख्तलिफ दौर है। वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ तो आई हैं लेकिन इंसान नहीं बदले। बच्चों के मैन्युफैक्चरिंग प्लान में कोई तब्दीली नहीं आ गई कि पहले बच्चे कुछ और तरह से असेंबल होते थे और आज कुछ और तरह से होते हैं। आज भी वही चीज़ है, सिर्फ ये है कि वो हाथ नहीं है जो इस कुरान को थामे और वो आवाज़ नहीं है जिससे इस पैगाम को दिया जाए। तो ज़रा सी चंद आयतों को इस सोच से पढ़िए कि जब ये मक्का वालों के सामने आती थी तो क्या होता था। इनसे कहो ऐ पैगंबर मेरी तरफ से, कह मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म ढाते रहे हो, अल्लाह की रहमत से अपनी आस न तोड़ो। यकीनन तुम रुजू करने वाले बनो तो अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। ला तकनतु मिन रहमत अल्लाह, सूरह ज़ुमर की आखिरी आयतें। और यकीनन वो दरगुजर करने वाला मेहरबान है, और तुम अपने रब की तरफ झुको और इसके हजूर में सर तस्लीमे खम कर दो कबल इसके कि तुमको अजाब आ घेरे और फिर तुम्हें कोई मदद न मिल सके। और पैरवी करो इस बेहतरीन तोशे हिदायत की जो तुम्हारे रब की बारगाह से तुम्हारी जाने भेजा गया, कबल इसके कि तुम्हें अजाब अचानक आ पकड़े जबकि तुम्हें खबर भी ना हो। फिर इस वक्त कोई जान ये कहती रह जाए कि हाय अफसोस मेरी इस कोताही पर जो मैंने अल्लाह के हक में दिखाई और मैं हकीकत की हंसी उड़ाता रहा, या वो मायूस होकर कहे कि अगर अल्लाह मुझे रास्ता समझाता तो मैं संभल कर चलने वालों में शामिल होता, या जब वो अजाब को देखे तो यूं कहे कि अगर एक मौका और मिले तो मैं एहसान कैश लोगों में जा मिलूं। सूरत ज़ुमर 53 से 58 है। इसमें कितने प्यार से आप देखिए कि गुनाहगारों को उम्मीद दिलाई गई है। यही इस्लाम की और दीन की खूबसूरती है। इस एक टुकड़े में बड़े ईजाज यानी मुख्तसर अंदाज से वो सारी बुनियादी सच्चाइयाँ समोई हुई हैं जिनकी आईनादार मोहसिन इंसानियत की दावत थी। फिर इसमें अक्ली इस्तदलाल भी मौजूद है और इसके साथ दिल हिला देने वाली जज्बाती अपील है। इसमें बिशारत भी है और इंतबाह भी है, यानी एक तरफ खुशखबरी है तो एक तरफ थोड़ा सा इंतज़ार का पहलू भी है। इंतबाह क्या होता है? नबा से खबरदार करना। कुरान इस तरह की रंगारंग पुकारों से भरा हुआ है। मिट्टी से बने हुए इंसानी पुतलों के बस में न था कैसे इनकलाब आफरीन कलाम की मौजों के सामने खड़े रह सकते, जबकि इसके रेले मुसलसल चले आ रहे थे हर सुबह हर शाम हर आन। 23 साल तक मुतवातर ये सैल यानी सैलाब ये सैल मानी उमड़ता रहा, तो आखिर कैसे तसव्वुर में आ सकता है कि नूर और हरारत की इन लहरों की जद पर आने वाले आदमजात अपनी जगहों पर जूं के तू जामित रह सकते। दो और इल्हाम पारे जिनमें अमूमी खिताब है मुलाहजा हूँ, यानी एक तो ये हिस्सा था, दो और जगह। इसमें से एक है सूरह यासीन आयत 60 से 62। हर आयत को दिल पर लें, सोचें कि आपको अल्लाह ताला कह रहा है। क्या ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमको खबरदार ना कर दिया था कि शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही है राह रास्त, और इसके बावजूद तुम में से बहुत सी खिलकत को बहका कर ले गया। फिर क्या तुम लोग सूझबूझ से काम ना ले सकते थे? और इसी तरह सूरत यूनुस 108, कह दो ऐ पैगंबर के लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से हक तुम तक आ पहुंचा, सो अब जो भी कोई राह याब हो तो इसका राह पर होना इसकी अपनी ही जान के लिए फायदा मंद है, और जो कोई भटके तो इसका भटकना खुद इसी के लिए नुकसान का जरिया है। और मैं तुम पर मुख्तार नहीं हूँ, यानी मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस चीज़ पे नहीं लगा सकता। तो अब देखिए कि जब ये आयतें उतरती होंगी तो दिलों पे असर तो होता ही होगा ना। वो लोग जिन्होंने मुखालफत के महाज खोले, इनके भी बेहतरीन एहसासात को पुकारा गया, और ज़्यादा से ज़्यादा मौसर और दिल गुदाज उसलूब से इनकी असासी फितरत को अपील किया गया। मुशरिकीन ने मक्का हों या अहले किताब, हर गिरोह के बेहतरीन अनासिर को बेहतरीन असलूब से खिताब किया और इनके बेहतरीन जज्बात को हरकत में लाने की कोशिश की, हत्ता के मुनाफिकीन को भी इसलाह की दावत दी। इस सिलसिले की मिसालें भी अलग अलग पेश की जाती हैं। यानी आपके मुखातिब कौन थे? मुशरिकीन ने मक्का, फिर इसी तरह से यहूदे मदीना, फिर इसी तरह से मुख्तलिफ। तो आइए ज़रा देखते हैं कुरान की आयतें, आप याद कर लीजिए कि अल्लाह का कलाम हर सोच के लोगों को कैसे मुखातिब करता है। मुशरिकीन ने मक्का से क्या खिताब है? अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल दी है जो अमन चैन से दिन गुजार रही थी और इसकी रोजी चारों तरफ से बाइफ़राद चली आ रही थी। फिर इसके लोगों ने यानी इसके रहने वाले, फिर इसके बाशिंदों ने अल्लाह के एहसानों की नाशुक्री की, सो अल्लाह ने इनके करतूतों के बदले में इन्हें भूख और खौफ की हालत का लिबास पहनाकर मज़ा चखाया, और इनके दरमियान खुद इन्हीं में से पैगंबर मबूस हो चुका था। फिर उन्होंने इसे झुठला दिया, बस इनको अजाब नया पकड़ा और वो थे ही जालिम। याद है कौन सी आयतें? सूरत नहल। कैसे मक्का की बस्ती को अल्लाह ने मिसाल बना दिए इधर। फिर इसी तरह अहले किताब से खिताब, ए अहले किताब, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ चुका जो किताब इलाही की इन बहुत सी हकीकतों को तुम्हारे सामने निथार कर ला रहा है जिन्हें तुम छुपाते हो, और वो बहुत सारी चीज़ों से दरगुजर भी करता है। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रोशनी आ चुकी और वाज़े किताब पहुंच चुकी, जिसके ज़रिए अल्लाह ऐसे लोगों को सलामती की राह पर लाता है जो इसकी मर्ज़ी के पीछे चलें, और इन्हें तारीकियों से निकाल निकाल कर अपने ख़ास हुक्म के मुताबिक उजाले में लाता है और इन्हें राह रास्त की तरफ रहनुमाई देता है। सूरह मायदा 15:16। कहो ए पैगम्बर के अहले किताब, अपने दीन में ना हक के मुबालगे से काम ना लो। ला तगलु फी दीनिकुम, अपने दीन में ना हक के मुबालगे से काम ना लो, और अपने हाँ कि ऐसे लोगों के नफसानी रुझानात के पीछे न चलो जो पहले से गुमराह हैं और जिन्होंने बहुत सारों को बहका दिया और जो सीधी राह से दूर जा पड़े। सूरत मायदा 77। और इसी तरह मायदा 19, ए अहले किताब, रसूलों के सिलसिले बैसत में एक लंबे वक्फे के बाद हमारा रसूल तुम्हारे पास आ चुका जो हकीकतों को तुम्हारे सामने निथार कर ला रहा है। मुमकिन है कहीं तुम बतौरे उजर कहो कि हम तक तो कोई बशारत देने वाला और मुतनब्बिह करने वाला आया ही ना था, बस अब बशारत देने वाला तुम्हारी तरफ आ चुका। किस तरह खुल खुल कर बात होती है। और इसी तरह से सूरत बनी इसराइल की इब्तदाई आयत, और हमने किताब में बनी इसराइल के लिए फैसला दे दिया कि तुम जमीन में दो मर्तबा फसाद करोगे और बहुत बुरी तरह सरकशी दिखाओगे। पस से बनी इसराइल, जब पहले वादे का मौका आया तो हमने तुम्हारे ऊपर अपने सख्त जंगजू बंदों को मुसल्लत कर दिया, फिर वो शहरों में फैल गए और वो वादा तो पूरा होना ही था। फिर हमने इनके मुकाबले में तुम्हें एक मौका दिया और अमवालो औलाद से तुम्हें तकवीयत दी और तुम्हारी तादाद बढ़ा दी और तुम्हें फिर मोहलत दी कि अगर तुमने भलाई इख्तियार की तो अपनी ही जानों का भला किया और अगर बुराई की तो वो भी अपने ही हक में की। फिर जब दूसरे वादे का मौका आया तो वो लोग तुम्हारे चेहरों को दुख और जिल्लत की स्याही से क्लोन साबे यानी काला कर दें और मस्जिद बैतुल मुकद्दस में इसी तरह घुसे जैसे वो पहले घुसे थे, जहां वो गलबा पाए वहां तबाही फैलाए, तो तुमने पूरा पूरा मजा चख लिया। अब जबकि दावत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूदार होने से तुम्हारे सामने एक फैसला कुन मौका और पैदा हुआ और तुम्हारा रब चाहता है कि तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम फिर वही कुछ करोगे तो हम भी वैसा ही मजा चखाएंगे और आखिरत में हमने जहन्नुम को नाफरमानों के लिए ठिकाना बनाया। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 4 से 8 थी। इसमें आप देखें कि उनकी हिस्ट्री बयान कर दी, लेकिन जब ये आयतें उनके सामने पढ़ी जाती होंगी तो ऐसे नहीं लगता होगा कि किसी ने आसमान से उनका नाम लेकर पुकार दिया। यानी एक तो होता है इनडायरेक्ट किसी से खिताब, कोई भी कुछ कहे और आप सुने, और एक है आपका नाम लेकर आपको वहाँ बिठा कर बात समझाई जाए फिर भी ना लोग माने। इससे ज़्यादा महरूमी की और क्या बात है। यानी आज के अहले किताब के लिए तो कुरान एक माजी की चीज़ है ना, नबी सल्लम के दौर के यहूद के लिए यह हाल की चीज़ थी। और याद रखिए, हाल की नसीहत को और तनकीद को बर्दाश्त करना बड़े हौसले की बात होती है। जैसे आज हम अपने माँ बाप की बातें सुनकर याद करके कहते हैं, हाँ हमें वो समझाते थे, हमारे कितने मुखलिस थे, लेकिन जिस वक़्त वो हमें समझाते थे उस वक़्त बुरे लगते थे। अपने वक्त पे बड़े की बात बुरी लगती है, उस्ताद कोई बात कहे बुरा लगता है, बाद में हम कहते हैं वो करते थे। तो जब हैं थे में बदलती है ना, तो याद रखिए कि मफहूम बदल जाता है। कहो कि अहले किताब, इस सीधे सीधे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरिक है। क्या तालो इला कलीमतिन सवाम बैनना, क्या है वो कलेमा? वो ये कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और न किसी शय को इसके साथ शरीक ठहराएं और न हम लोग अल्लाह को छोड़कर बाहम एक दूसरे को रब बना लें। सूरत आल इमरान आयत 64। तो आपने देखा कि इन सारी आयतों में मौजवे सोहन यहूद की तरफ था। फिर इसी तरह ईसाइयों से खिताब की कुछ मिसालें कुरान में, और तुम यहूद के मुकाबले में इन लोगों को मुसलमानों की मोहब्बत में करीब तर पाते हो जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, ये इस वजह से कि इन लोगों में उलमा और दरवेश हैं और इस वजह से कि ये लोग तकब्बुर में मुबतला नहीं हैं। और ये लोग जब इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतरा है तो इनके हक को पहचानने के बायस तुम इनकी आंखों को देखते हो कि आंसुओं से डूब डुबा जाती हैं। वो पुकार उठते हैं कि हमारे रब हम ईमान लाए, बस हमें हक की शहादत देने वालों में लिख दे। मायदा 283। और आप देखिए कि इस कुरान ने ईसाइयों की तारीफ की है कि यहूद के मुकाबले में ये हक शनासी में करीब तर हैं। इसीलिए आज देखिए कि रिवर्शन रेट इस सोच के लोगों में ज़्यादा है। तासुब ना हो ना तो इंसान बात सुनकर मान जाता है, चल पड़ता है उस चीज़ की तरफ। इसी तरह कुछ मिसालें मुनाफिकीन से खिताब की। आप इन सारी बातों को सुनते वक्त ये सोचिए, कोई पहलू छूटा नहीं है कुरान में, हर एक पे हुज्जत तमाम हुई। क्या है मुनाफिकीन से खिताब? सूरत तौबा 126-128 तक। क्या ये मुनाफिक सोचते नहीं कि ये हर साल दो एक बार आजमाइश में डाले जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और ना नसीहत कबूल करते हैं? और जब कभी कोई सूरत नाजिल होती है तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि क्या कोई तुम्हारी तरफ देख रहा है? सोचिए ज़रा, क्या उस वक्त दिल की कैफियत होती होगी? शर्मिंदगी तो होती होगी ना। फिर उठ के चले जाते हैं। इनके दिलों को अल्लाह ने इसलिए फेर दिया कि ये लोग सूझबूझ से काम नहीं लेते। देखो, तुम्हारे अंदर से रसूल तुम्हारे पास आ चुका, इसके लिए बारे खातिर है, यानी बोझल है। हर वो चीज़ जो तुम्हें तकलीफ़ दे वो तुम्हारा मुश्ताक है, यानी उनको इसका शौक़ है, और वह अहले ईमान के लिए शफीक और मेहरबान है। तो क्या पता चला, कुरान दिलों को पिघला देने वाले ऐसे बोलों से भरा पड़ा है। सोचिए, दुआ करें अल्लाह हमारे दिलों को भी पिघला दे। रूहों में पेवस्त हो जाने वाले जुमले, ज़मीरों में तहरीक पैदा कर देने वाले मोतियों जैसे अल्फाज, एहसासात के तारों को छेड़ देने वाले अदबी असलूब या असलीब। कितनी बड़ी ताकत है कुरान, और कितनी हंगामा खेज रही होगी दावते हक। कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं उस दौर को देखूं जहां ये कुरान नाजिल होता था, वाकई क्या हंगामा खेजी होगी। और मैं जब भी नबी सल्लम का और सहाब का सोचती हूँ ना, तो मुझे एक हलचल दिखती है। सुस्ती नहीं थी वहाँ, ठंडापन नहीं था, ढीलापन नहीं था, रिलैक्सेशन नहीं थी, क्योंकि ऊपर से गर्म गर्म आयतें भी तो आती थी ना। ये ऐसी है कि जब हम पढ़ते रहते हैं ना तो हम भी गर्म रहते हैं, और जब पढ़ना छोड़ते हैं तो सुन्न हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। चूल्हा जल रहा हो ना तो खाना उबलता रहेगा, चूल्हा बंद कर दें तो थोड़ी देर ही बाद ठंडा हो जाएगा। कभी खुद को ठंडा ना होने दें, अपने आप को ज़ाया ना करें। ठंडी चीज़ तो अच्छी भी नहीं लगती, कितनी मज़े की चीज़ क्यों ना, जब ठंडी हो आप खा कर देखिए, चक्कर देखिए, आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। हकीकत की ये शुआएं जब पे दर पे बरसती होंगी, तो औसत दर्जे के इंसानों के लिए कैसे मुमकिन रहा होगा कि वो अफकारों किरदार की तारीकियों को सीने में आरास्ता किए रखे? दलील की ताकत के साथ जब अपील की ताकत आ मिलती है तो ये दो धारी तलवार पत्थरों को भी काट जाती है। ये थी वो पीछे जुमला। फिर जहाँ कुरान की बाराने कलाम की फुहारें मुतवातर पड़ रही थी, वहाँ साहिब नबूवत का तकल्लुम भी दरसों खुतबों तकरीरों और गुफ्तगुओं में हर आन नूर की लहरें उठा रहा था। जमाने ने इस बहरे मवाज के जो मोती महफूज रखे हैं, जरा आज इनको जांचो। छोटे छोटे बोल थोड़े थोड़े लफ्जों में ज्यादा मानी, अदबियत व खिताबत का जोर, बात में रूह इखलास खुली हुई, गुफ्तगू हालात के मुताबिक, किसी दूसरी शख्सियत का समंदर ऐसे मोती फिर पैदा न कर सका। कितना सच है ये। फिर इस्लामी तहरीक के शोरा और अदीब और खतीब थे कि जिन्होंने नए फनी मेयारात और इनकलाबी असालीब के साथ जब साज़े नुतुक, नुतुक कहते हैं बोलना, जब साज़े नुतुक पर इस्लाम के कलमा इनकलाब का जख्मा चलाया, तो इनकी हर मौजे आहंग ने रेत के जर्रों में भी धड़कते हुए दिल पैदा कर दिए होंगे। आज भी इस दौर के दफ्तरे सुखन को उठाकर देखो तो हसान बिन साबित, काब बिन मालिक का हसीन तखयल, इनके मुखलिसाना जज्बों के पर लगाकर अजीब उकाबी शान से उड़ता दिखाई देता है। इनके नगमे जब रोज़मर्रा वाक़ियात से हम आहंग और कशमकश के माहौल से मरबूत होकर नमूदार होते होंगे, तो आखिर इंसानी दिलों पर कोई तो कैफियत गुजरती होगी, मुद्दा ये है, यानी बात से जो चाहिए वो क्या कि असल ताकत कौले हक की थी। इसको हाईलाइट करें, असल ताकत सच्ची बात की थी, हक वाले कौल की थी, जिसके सामने मुमकिन न था कि बातिल मैदान में जमा रहे। क्या समझ आता है? इन्नल बातिल काना ज़हूका। असल बात ये है, यानी जो भी पूरी बात हुई है ना, उसका खुलासा क्या है कि जब तक दलील के साथ अपील ना हो, बात दिलों में ना जाए, फायदा नहीं होगा। आप इसको जैसे भी समझे, आप अपने बच्चों को नसीहत करते ना, कितना ही आप उनके फायदे की बात करें, और 99% माँ बाप अपने बच्चों के फायदे की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपकी बात उनको अपील ना करें, उनके दिल दिमाग पे अपना असर ना दिखाए, तो कहते ना कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, और मर्द नादा पे कलाम है दिल फरेब बेअसर। बस ये दुआ करें कि अल्लाह हमारी बात में तासीर पैदा कर दे, असर डाल दे, हमारी बातें न कारखाने में तोती की आवाज़ें ना हों कि जो बोलती ही रहे और किसी के कानों पे कोई जूं तक ना रिंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर काम बनता नहीं है, काम चलता नहीं है। जितना ज़्यादा आप कोई काम इस सोच के साथ करेंगे ना कि आपने इस काम को मुअस्सर बनाना है, उतना अल्लाह ताला की मदद भी आएगी और उतनी उसमें खैर भी आएगी, और उसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक रहनुमाई आएगी। और ये भी एक बात नोट कीजिएगा कि ये अल्लाह की खास मदद थी नबी सल्लम के साथ। तभी तो देखिए ना कि इस्लाम आगे गया। यही तो बात जब थी तो फिर ही तो वो आगे और से और बढ़ते चले गए ना, तो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो और हमारी कमी बेशियों से दरगुजर फरमाए, और हमें एक एक नेमत का बेहतरीन हक अदा करने वाला बनाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।